एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत
नमस्कार। ग्रंथ सार में आज हम बात करेंगे एंटनी विल्सन के एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास के बारे में, माउथ टू माउथ।
जी,
ये एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने के बाद भी जहन में घूमती रहती है।
हाँ, और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर दे।
जरूर।
इसके लेखक एंटनी विल्सन हैं, कभी कभी एडवार्डो बैलरिनी का नाम आता है, वो ऑडियो बुक के नरेटर हैं, कमाल के।
हाँ, उनकी आवाज ने जान डाल दी है कहानी में, लेकिन लिखा विल्सन नहीं है।
बिल्कुल, विल्सन मतलब आज के अमेरिकी साहित्य में काफी अहमियत रखते हैं।
हाँ, उनकी लिखाई में वो पहचान, किस्मत और रिश्तों के धोखे वाली बातें बड़ी गहराई से आती हैं।
और माउथ टू माउथ तो 2022 में आते ही छा गया था।
जी, बराक ओबामा की पसंदीदा किताबों में भी था उस साल।
है तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल सस्पेंस या लिटरेरी थ्रिलर कह लें।
हाँ, कह सकते हैं, पर ये उससे कई ज्यादा है। इसकी बनावट, वो जिसे कन्फेशनल फ्रेम नैरेटिव कहते हैं।
अच्छा, कहानी के अंदर कहानी।
बिल्कुल, जैसे कोई राज खोल रहा हो। कुछ कुछ हार्ट ऑफ डार्कनेस या द ग्रेट गैट्सबी जैसा फील देता है।
तो आज इसी पेचीदा कहानी, किरदारों और इसके मतलबों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं।
जरूर। तो कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट पर, फर्स्ट क्लास लॉन्ज में। माहौल वैसे तो आम सा है, पर एक अजीब सा तनाव है।
और हमारा कथावाचक, जिसका नाम हमें पता नहीं चलता।
हाँ, वो एक लेखक है, उसकी फ्लाइट लेट है।
ओके।
और वहीं उसकी मुलाकात होती है जेफ कुक से, कॉलेज का कोई पुराना साथी जिसकी याद भी धुंधली सी है।
लेकिन ये आज वाला जेफ पहले जैसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं, अब वो बहुत अमीर लगता है, आत्मविश्वास से भरा हुआ।
अच्छा।
और वहीं टाइम पास करने के लिए जेफ एक अजीब सी बात कहता है।
क्या
कहता है कि वो उसे एक कहानी सुनाएगा, अपनी जिंदगी का एक राज खोलेगा, एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया।
ये तो दिलचस्प है।
हाँ, तो कथावाचक थोड़ा हैरान, थोड़ा खिंचावा सा सुनने को तैयार हो जाता है। कौन मना करेगा भला।
सही बात है, और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है।
हाँ, जेफ की कहानी हमें ले जाती है सेंटा मोनिका, कैलिफोर्निया का एक धूप वाला बीच। वो बताता है कि कैसे कई साल पहले, जब वो खुद यंग था, थोड़ा दिशाहीन, उसने एक अजनबी को डूबने से बचाया था।
माउथ टू माउथ देकर?
जी है, माउथ टू माउथ रेसिस्टेशन, अपनी सांसें देकर उसे वापस लाया।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो होगा।
बिल्कुल। पेंच ये है कि जैसे ही पैरामेडिक्स आते हैं, वो आदमी
गायब।
हाँ, बिना शुक्रिया कहे, बिना पहचान बताए, गायब हो जाता है।
अजीब है।
और यही बात जेफ के दिमाग में अटक जाती है, एक जुनून सा बन जाता है
कि वो था कौन आखिर।
हाँ, मैंने किसकी जान बचाई। और यहीं से वो सवाल उठता है, किसी की जान बचाने का मतलब क्या है? क्या कोई रिश्ता बन जाता है, कोई जिम्मेदारी?
गहरा सवाल है।
और ये जुनून जेफ को चैन नहीं लेने देता, वो उसे ढूंढने निकलता है,
उस अजनबी को।
हाँ, बहुत मशक्कत के बाद पता चलता है कि वो आदमी फ्रांसिस जे आर्सेनॉल्ट है।
फ्रांसिस जे आर्सेनॉल्ट, ये नाम सुना हुआ लगता है।
हाँ, लॉस एंजलिस आर्ट वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम, अमीर, ताकतवर और
बेरहम आर्ट डीलर।
बाप रे।
तो जेफ ने उसे ढूंढ लिया, फिर
जेफ एक प्लान बनाता है। वो अपनी असलियत छुपाता है, ये नहीं बताता कि उसी ने जान बचाई थी।
अच्छा।
और किसी तरह फ्रांसिस की मशहूर आर्ट गैलरी में एक छोटी सी नौकरी पा लेता है।
ओह, मतलब अंदर घुस गया।
हाँ, एक जासूस की तरह वो फ्रांसिस की दुनिया को, उसकी जिंदगी को करीब से देखने लगता है।
क्या देखता है वो?
उसका बिजनेस करने का तरीका, उसकी क्रूरता, वो कैसे कलाकारों को, अपने स्टाफ को कंट्रोल करता है, और अपनी बेटी क्लोई के साथ उसका रिश्ता, जो काफी फंडा और तकलीफदेह है। जेफ के मन में ये बात बैठने लगती है कि ये फ्रांसिस तो नैतिक रूप से बिल्कुल खोखला है।
और फिर वो सवाल और गहरा हो जाता होगा।
हाँ, कि क्या ऐसे आदमी को बचाकर मैंने कोई गलती कर दी? क्या मैंने दुनिया में और बुराई फैला दी?
यहाँ किरदारों की परतें खुलती हैं।
हाँ,
हमारा कथावाचक है।
हाँ, जो कहानी सुन रहा है वो ज्यादातर चुप है, एक दर्शक जैसा,
पैसिव सा लगता है।
हाँ, उसकी अपनी जिंदगी जेफ के ड्रामे के आगे फीकी है। उसका सफर बाहरी कम, अंदरूनी ज्यादा है। वो एक सुनने वाले से
राजदार बन जाता है।
हाँ, एक मजबूर राजदार जिसके कंधों पर एक भारी बोझ आ जाता है।
और जेफ कुक, वो तो कहानी का सेंटर है।
बिल्कुल, वो खुद को ऐसे दिखाता है जैसे वो तो बस हालात का शिकार था, एक हीरो, पर वो कहानी कहने में माहिर है।
मतलब शायद वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहा।
यही शक होता है, वो कहानी को अपने हिसाब से गढ़ता है ताकि वो सही लगे, एक आम लड़के से वो एक शातिर खिलाड़ी बन जाता है जो अपने गलत कामों को भी सही ठहराने की कोशिश करता है। वो एक अविश्वसनीय कथावाचक है।
अनरिलायबल नैरेटर। और फ्रांसिस आर्सेनॉल्ट?
वो ताकत का, क्रूरता का प्रतीक है, बेलगाम पूंजीवाद का चेहरा। जेफ की कहानी में वो विलन है।
और यही विलन होना जेफ को अपने एक्शंस जस्टिफाई करने में मदद करता है।
बिल्कुल, जेफ उससे नफरत करता है पर शायद कहीं ना कहीं उसकी जैसी ताकत पाना भी चाहता है।
और फिर है क्लोई, फ्रांसिस की बेटी।
हाँ, क्लोई वो समझदार है, अच्छी है, पर अपने पिता के रवैये से दुखी है, जैसे सोने के पिंजरे में कैद हों।
और जेफ उसके करीब आता है।
हाँ, बड़ी चालाकी से उनके बीच एक लव स्टोरी शुरू होती है।
क्या वो प्यार सच्चा था जेफ की तरफ से?
ये एक बड़ा सवाल है। क्लोई के लिए शायद हाँ, पर जेफ, क्या वो सिर्फ फ्रांसिस तक पहुंचने का रास्ता था या उसे वाकई क्लोई से लगाव था? शायद दोनों।
और हम जो कहानी सुन रहे हैं, हमें पता है कि जेफ धोखा दे रहा है।
हाँ, यही तो ड्रामेटिक आयरनी है। जेफ दोहरा जीवन जी रहा है, क्लोई के लिए प्यार और उसके पिता के लिए छिपा हुआ जुनून। बेचारी क्लोई इस सब की कीमत चुका रही है अनजाने में।
और यही वो किस्मत और मर्जी वाला सवाल आता है।
बिल्कुल, फेट वर्सेस फ्री विल। जेफ सब कुछ ऐसे बताता है जैसे सब किस्मत में लिखा था। बीच पर हुई घटना ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया जिससे वो रोक नहीं सकता था।
पर क्या ये सच है या ये उसके अपने फैसले थे?
हाँ, फ्रांसिस का पीछा करना, गैलरी में घुसना, क्लोई का इस्तेमाल करना, ये सब उसके चुनाव थे या मजबूरी?
उपन्यास इसे धुंधला छोड़ देता है।
शायद हम सब भी अपनी गलतियों को किस्मत का नाम दे देते हैं कभी कभी।
हो सकता है। कहानी आगे बढ़ती है, कई साल बीत जाते हैं।
जेफ अब गैलरी में काफी ऊपर पहुंच गया है।
हाँ, और फ्रांसिस का होने वाला दामाद भी। लेकिन वो बीच वाला राज कि उसी ने जान बचाई थी,
वो अब भी राज है।
उम्मीद थी उसे
शायद आभार की, पहचान की, या बस उस बोझ से मुक्ति की। वो फ्रांसिस को बीच वाली कहानी सुनाता है।
और फ्रांसिस का रिएक्शन?
बिल्कुल उल्टा। वो जेफ का मजाक उड़ाता है, कहता है तुम बस एक मौका परस्त हो, एक चमचे, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं।
ओहो, ये तो जेफ के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
हाँ, उसकी पूरी पहचान, उसका बनाया हुआ भ्रम सब टूट जाता है।
और यही कहानी कहने की कला और सच्चाई वाला मुद्दा और गहरा हो जाता है।
बिल्कुल, अब साफ है कि जेफ कहानी अपने फायदे के लिए गढ़ रहा था। उपन्यास की ये बनावट कि एयरपोर्ट पर कहानी सुनाई जा रही है।
हाँ, ये दिखाती है कि कहानियों से कैसे हेरफेर किया जा सकता है, सच को बदला जा सकता है।
जो हुआ उससे ज्यादा जरूरी वो कहानी बन जाती है जो सुनाई जा रही है।
तो अब कहानी का क्लाइमैक्स?
हाँ, अब जेफ की कहानी अपने सबसे अंधेरे, सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आती है। एयरपोर्ट लाउंज में उसकी आवाज बदल जाती है।
क्या बताता है वो?
पहला धमाका, उस दिन बीच पर फ्रांसिस गलती से नहीं डूब रहा था, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था।
क्या? अरे बाप रे, मतलब जेफ ने जिसे बचाया
वो मरना चाहता था। जेफ का वो हीरो वाला काम असल में फ्रांसिस की मर्जी में दखल देना था।
तो फ्रांसिस को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी जो वो चाहता ही नहीं था।
हाँ, और वो दूसरों को तकलीफ देता रहा, और जेफ को लगता है कि इसकी जिम्मेदारी उसी की है।
और फिर?
कहानी खत्म नहीं हुई अभी।
नहीं, अभी आखिरी रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा बाकी है।
क्या? सालों बाद फ्रांसिस मर गया, दुनिया ने सोचा हादसा है, पर जेफ कबूल करता है
कि ये हादसा नहीं था।
नहीं, जेफ ने ये मानते हुए कि उसे अपनी पुरानी गलती सुधारनी है, फ्रांसिस की मौत की साजिश रची, उसे हादसे का रूप दिया।
हे भगवान,
उसने उसे मार डाला।
हाँ, ताकि क्लोई को दुख ना हो, गैलरी की साख बची रहे।
तो फ्रांसिस के बाद जेफ ने उसकी जगह ले ली।
बिल्कुल, क्लोई से शादी की, आर्ट एम्पायर संभाला, उसका सफर पूरा हुआ, जान बचाई भी, जान ली भी, और एक तरह से
फ्रांसिस की जिंदगी ही चुरा ली माउथ टू माउथ।
क्या अंत है। कहानी घूमकर वहीं एयरपोर्ट लाउंज में आ जाती है
और फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है।
जेफ उठता है, कथावाचक को थैंक यू कहता है और चला जाता है।
पीछे रह जाता है कथावाचक और हम इस भयानक राज के बोझ के साथ।
अब कथावाचक एक कातिल का राज जानता है, वो क्या करेगा? कहानी यहीं खत्म हो जाती है एक सवाल के साथ।
उपन्यास में सिंबल्स भी हैं। माउथ टू माउथ सिर्फ जान बचाना नहीं।
हाँ, वो जिंदगी पहचान के हिंसक ट्रांसफर का प्रतीक है। समंदर अनिश्चितता का, आर्ट वर्ल्ड उस सतहीपन का जहाँ कहानियों का भी सौदा होता है।
पढ़ने वाले पर इसका असर बहुत गहरा होता है।
हाँ, तनाव धीरे धीरे बनता है और अंत में सिहरन पैदा करता है। जेफ की कहानी हमें बांधती है पर शक भी बना रहता है।
आखिरी खुलासे चौंकाते हैं, हिंसा की वजह से नहीं बल्कि उनके पीछे की ठंडी लॉजिक की वजह से।
बिल्कुल, दिमाग घूम जाता है, नैतिकता पर सवाल उठते हैं।
कोई आसान जवाब नहीं मिलता जेफ सही था या गलत।
और लोग जो कहानियां सुनाते हैं उनमें कितना सच होता है, कितना खुद को सही साबित करने की कोशिश।
ये हीरो विलन जिम्मेदारी इन सब धारणाओं को हिला देता है।
हाँ, दिखाता है कि सबसे खतरनाक वो होते हैं जो अपनी बुराई को भी बड़ी खूबसूरती से जस्टिफाई कर सकते हैं।
ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि एक जान बचाने जैसा काम भी कितना उलझ सकता है और उसके नतीजे कहाँ तक जा सकते हैं।
और कहानी कहने की ताकत और उसके खतरों पर भी ये गहरी टिप्पणी है, कैसे कहानियां सच को बना भी सकती हैं और छुपा भी सकती हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एगत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।